मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 28 मार्च 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी के 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं पवन कुमार यादव इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, ललित कुमार मौर्य हरदोई उत्तर प्रदेश से, विपिन कुमार लखनऊ उत्तर प्रदेश से, अरुण प्रजापति अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से, जोहेब खान बालाघाट मध्य प्रदेश से, राजेश कुमार चंडीगढ़ पंजाब से और रेखा महर रिसालिया खेर हरियाणा से। तो पवन, ललित, विपिन, अरुण, जोहेब, राजेश और रेखा, आप सभी सातों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस बीच में मुझे मेल मिलते रहे थे लेकिन चूंकि मैं डेली ऑडियो लेक्चर उस पुराने पैटर्न पर तैयार नहीं कर पा रहा था तो इसीलिए कुछ चीजें आपको सूचित नहीं कर पा रहा था। इस बीच में मुझे एक मेल मिला था और यह मेल था हर्षा जी गोहेल का, जो अहमदाबाद की हैं और हमारे 5th बैच की स्टूडेंट रही हैं। उन्होंने मेल के जरिए सूचित किया था कि गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में वो अपीयर हुई थी और उसका फाइनल रिजल्ट आ गया और फाइनल रिजल्ट में उन्होंने DYSP का पद पाने में सफलता हासिल की। तो हर्षा, आपके इस सफलता के लिए मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, आपके अपने बैचमेट्स की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और जीवन में आप और भी बेहतर सफलता प्राप्त करें इसके लिए ईश्वर से हम सभी प्रार्थना भी करते हैं और शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही कल मुझे एक और मेल मिला है। वह मेल है श्वेता राज का, जो हमारे 7th बैच की स्टूडेंट रही हैं, चंपारण बिहार से हैं। उन्होंने सूचित किया है कि अभी कोई स्टेट लेवल का कंपटीशन हुआ था गांधी जी पर और उसमें उन्होंने प्राइज पाया, फर्स्ट रैंक उन्होंने हासिल की जिसके लिए उन्हें नगद पुरस्कार भी दिया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। और इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि सर, दिस ऑल वेयर पॉसिबल, सर यह सब संभव हुआ है केवल आपकी लाइफ मैनेजमेंट के लिए, जिससे मैंने अपने पूरे विचारों की तैयारी की और वो क्रमशः मेरे अंदर वो चीजें होती गईं और उसी से मुझे इसके सूत्र मिले, साहस मिले और कठिन से कठिन परिस्थितियों से उबरने का एक प्रकार से साहस भी मिला, ताकत भी मिली। मैं अंग्रेजी के शब्द उनके पढ़ देता हूं। सर, दिस ऑल वेयर पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर लाइफ मैनेजमेंट विच प्रिपेयर्ड माई थॉट्स लेयर बाई लेयर, ऑल्सो गिव मी क्लूज एंड करेज टू बी फ्री फ्रॉम वेरियस डिफिकल्ट सिचुएशन। तो श्वेता, इस सफलता के लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई, हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना भी कि लगातार आप इसी तरह से सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ती जाएं। फ्रेंड्स, आइए अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आपसे थोड़ा सा एक अलग ही तरह की बात आज करने जा रहा हूं, जो सीधे करंट से तो रिलेटेड नहीं है लेकिन करंट से उसका संबंध कहीं न कहीं है। और ये है, आज हम सोशल चेंजेस यानी सामाजिक परिवर्तन और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी होती है, राजनीतिक दल, इनके बारे में कुछ बातें करेंगे। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज में भी आपने सुना होगा खाप पंचायतों को लेकर के। खाप पंचायतों पर लगातार अभी सुप्रीम कोर्ट के इससे पहले भी एक जजमेंट आया था, अभी फिर से जजमेंट आया है और इनकी बातें अखबारों में और कार्रवाइयां छपती भी रहती हैं और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी इन पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो खाप पंचायत के बारे में आप जानते होंगे। खाप पंचायतों को लेकर के अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि अगर कोई बालिग है, यानी कि बालिग हो चुके हैं, प्रौढ़ हो चुके हैं, मतलब युवा हो चुके हैं और अपने अगर वो पसंद से शादी करते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की कोई भी संस्था, दूसरी संस्था दंडित नहीं कर सकती। दंड देने का एकमात्र अधिकार न्यायालय को होता है। अगर कोई हस्तक्षेप करता है उनके जीवन में तो वह गैरकानूनी है। और उन्होंने फिर कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। दिशा निर्देश का मतलब है कि जब तक की सरकार कानून नहीं बना लेती है तब तक उनकी सुरक्षा की और कुछ रखरखाव की व्यवस्था सरकारें करें। फ्रेंड्स, आप अक्सर इस तरह की खबरें पढ़ते रहते होंगे कि किसी युवती ने आपस की पसंद से शादी कर ली और इसके बाद खाप पंचायत ने उन्हें या तो ग्राम निकाला दे दिया या कुछ और सजाएं दे दी। यहां तक कि हत्याओं तक की खबरें पढ़ने को मिलती हैं। उसके बहुत से रीजन होते हैं, कहीं जाति व्यवस्था आड़े आती है, कहीं गोत्र आड़े आते हैं, तो बहुत सी चीजें हैं। और खाप पंचायतें हमारी पुरानी व्यवस्था के अंग है, जो एक तरह से सामाजिक समूह है, उसके बारे में आप जानते हैं। कुछ समय से आप महसूस कर रहे होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आ रहे हैं उसके तहत जो हमारी प्राइवेसी है, जो हमारी प्राइवेट लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश हो रही है। आप देखिए कि डाटा जो रिलीज हो रहे हैं उसको लेकर के प्राइवेसी की बात होती है। केरल में भी एक ऐसी लव जिहाद को लेकर के मामला आया था, उसमें भी कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि नहीं, अगर वो युवा है तो फिर वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हमारे सामने आ रही हैं और उसी के तहत एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी प्राइवेट लाइफ है, जो प्राइवेसी है, और हमारे वयस्क हो जाने के बाद जो अधिकार होते हैं, जीवन के जो अधिकार होते हैं, उनकी रक्षा इसके माध्यम से की है। मैं समझता हूं कि ये दोनों ही दो तीन दृष्टियों से यह घटना इम्पॉर्टेंट है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, दूसरा हमारे निजी अधिकार, जीवन का अधिकार, और साथ ही हमारे समाज में जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उन प्रेशर ग्रुप की प्रासंगिकता, ये दो तीन प्रश्न इस घटना के माध्यम से बनते हैं, वो आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए। फ्रेंड्स, कर्नाटक विधानसभा के चुनाव की डेट डिक्लेयर हो गई है, बस इसके बारे में कुछ ज्यादा बताने को नहीं है। आपने देखा कि जैसे ही डेट डिक्लेयर होती है आदर्श चुनाव संहिता लागू हो जाती है। उसमें आपने एक वाक्य और सुना होगा कि ये जो आदर्श चुनाव संहिता है ये केंद्र पर भी लागू होगी। आपको लग रहा होगा कि इस चुनाव तो राज्य सरकार की है तो केंद्र पर क्यों लागू हो रही है, राज्य सरकार पर लागू होना चाहिए, तो वो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। दरअसल होता यह है कि आदर्श चुनाव संहिता का जो मतलब होता है, इनफैक्ट जो मूल उद्देश्य होता है, कह लीजिए कि सरकारें जो सत्ता में हैं या जो सत्ता में नहीं भी हैं, वो किसी भी तरीके से अब मतदाताओं को लुभा न सकें। देखिए, ये अवसर सबसे ज्यादा उनको मिलता है जो सत्ता में है। मान लीजिए चुनाव डिक्लेयर हो गए, ठीक है, अब चाहे तो राज्य सरकार या यहां तक कि केंद्र सरकार अब उस राज्य के लिए बहुत सी घोषणाएं कर सकती है, सामाजिक कल्याण की घोषणाएं या और विकास संबंधी घोषणाएं कि यहां पुल बनेगा, यहां सड़कें बनेंगी, ताकि वहां के लोग उन्हें वोट दें। तो आदर्श आचार संहिता का जो मूल उद्देश्य होता है वो यही कि आप जो मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करते हैं उस पर नियंत्रण लगाया जा सके। जहां तक केंद्र सरकार की बात है, अब आप देखिए कर्नाटक में चुनाव होंगे, ठीक है, कर्नाटक में अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, भटनेचरले के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी अपने कैंडिडेट खड़ी करेगी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अगर केंद्र पर ये आदर्श चुनाव संहिता लागू नहीं किया जाएगा तो आप मान करके चलिए तो केंद्र कर्नाटक के लिए कुछ घोषणाएं कर सकती है और उससे जो निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए उसमें बाधा आती है। इसलिए फ्रेंड्स, केंद्र के बारे में भी बात की गई है। एक और छोटी सी खबर है, वो है संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही। आप देख रहे हैं कि दोनों सदन काम नहीं कर पा रहे हैं, हंगामा हो रहा है, इतना सब कुछ उस पर खर्च हो रहा है, और सच पूछे तो हमारे देश की महापंचायत है, तो जो लेजिस्लेचर का जो काम होना चाहिए डिस्कशन के माध्यम से, वो अपनी बातों को रखें, देश को शिक्षित करें, अवगत कराएं, उस तरह की चीजें नहीं हो पा रही हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा फ्रेंड्स कि इस स्थिति को लेकर के इससे पहले बकायदे प्रश्न भी मेंस में पूछे जा चुके हैं, तो इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ध्यान रखना होगा कि इस टॉपिक से संबंधित अगर कुछ पॉइंट्स आपको मिलते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, दूसरे देशों में किस तरह की व्यवस्था है, कैसे इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या इसको कम किया जा सकता है, अगर ऐसे आपको पॉइंट्स मिलते हैं तो बेहतर होगा कि आप उन्हें नोट करते जाएं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ दूसरी खबरें थी। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय जैसा कि मैंने आपको बताया सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक दल, हम इस पर बातें करेंगे। फ्रेंड्स, डेफिनेटली फ्रीडम मूवमेंट आपने पढ़ा ही होगा, वो जनरली सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के सिलेबस में होता है। आप पाएंगे कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई और 1905 के बाद 1905 के आसपास से ही जब आंदोलन में तेजी आई, तो कांग्रेस ने फैसला किया था, जो उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, और कह लीजिए कि उस समय 1900 के आसपास तो एकमात्र थोड़ी सी बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, बाद में तो और भी बनती चली गई, तो उन्होंने यह निर्णय लिया था कि जनता को अशिक्षित किया जाए, जनता में राजनीतिक चेतना पैदा की जाए। और आप पाएंगे कि लंबे समय तक कांग्रेस के जो भी अधिवेशन होते थे उनमें यह एजेंडा रखा ही जाता था और लोगों से कहा जाता था कि आप जनता के बीच जाइए और उनमें राजनीतिक चेतना पैदा कीजिए। यानी कि ठीक है, हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था जिसका मूल उद्देश्य राजनीतिक आजादी हासिल करनी थी, लेकिन उसके साथ ही साथ वो इस बात का भी ध्यान रखते थे कि हमें अपने लोगों को जगाना है, उनके अंदर एक प्रोग्रेसिव या कह लीजिए कि एक प्रगतिशील विचार पैदा करना है। फिर आप देखते हैं कि जैसे ही गांधी जी राजनीतिक आंदोलन में आते हैं तो फिर तो उन्होंने इसे अपना एक समानांतर मकसद बना लिया था। अस्पृश्यता के विरोध में आप देखिए, स्वदेशी के पक्ष में आप देखिए, तो ढेर सारे इस तरह के भी काम वो लगातार करते रहते थे। यानी कि हम देखते हैं कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की जो राजनीतिक पार्टियां थी उनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य समानांतर रूप में यह भी हुआ करता था कि हम समाज को कैसे आगे ले जाएं, राइट। आजादी के बाद से आप पाएंगे कि धीरे धीरे सामाजिक चेतना वाली बात क्रमशः कम होती चली गई है, है ना। राजनीतिक चेतना की मैं बात नहीं कर रहा हूं, राजनीतिक चेतना तो अब लोगों में अब काफी कुछ आ चुकी है, अब वो अपनी तरफ से निर्णय लेते हैं और अब आप देखिए कि सत्ता परिवर्तन बैलेट के माध्यम से, वोट के माध्यम से वो करने में उनको जरा भी किसी तरह के द्वंद का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जहां तक देखिए सामाजिक चेतना की बात है, कुछ लोग, कुछ विचारक, कुछ राजनीतिक प्रेक्षक ये मानने लगे हैं कि मामला कुछ उल्टा सा हो रहा है। मामला उल्टा सा हो रहा है इस मायने में कि जो राजनीतिक दल हैं अब समाज के संबंध में जो भी निर्णय ले रहे हैं वो केवल अपने राजनीतिक लाभ की दृष्टि से, यानी कि उनके केंद्र में ये बात नहीं होती है, उनके डिसीजंस के केंद्र में, कि ये जो निर्णय लिए जा रहे हैं इस निर्णय से वास्तव में उस समाज का हित होगा या अहित होगा। केवल उनका जो केंद्र होता है निर्णय का वो ये होता है कि अगर हम यह निर्णय ले रहे हैं तो इससे जो समूह प्रभावित होगा, समाज का जो समूह प्रभावित होगा, उस समूह के वोट हमें मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं, समूह के वोट नहीं मिल पाएंगे, तो स्वाभाविक तौर पर फिर वो निर्णय नहीं लेते, भले ही उसे कितना भी सामाजिक हित क्यों न सदता हो। इस तरह की घटनाएं आपको लगातार पिछले कुछ समय से ज्यादा देखने को मिल रही होंगी। हालांकि देखिए राजनीति में लगातार ये होता ही रहता है। जो प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप का काम ही कुछ इस तरीके का होता है कि वो अपना प्रेशर बनाएं और राजनीतिक दलों के ऊपर अपनी मतलब समूह की इच्छाओं को लागू करवाने, पूरा कराने के लिए दबाव डालें। अब ये राजनीतिक दलों के ऊपर है कि वह इन दबावों से कितना अप्रभावित रह करके जो सामाजिक हित है, जो एक व्यापक हित है, उस व्यापक हित को साध सके, ये राजनीतिक दलों के ऊपर है। अभी आप कुछ घटनाएं देखिए, जैसे अभी लिंगायत समुदाय को अल्पसंख्यकों का दर्जा देने का जो मामला आया, इससे पहले पद्मावत फिल्म को लेकर के जो बातें हुई, दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि तीन तलाक के मामले को लेकर के जिस तरीके से समाज में बहस छिड़ी, आरक्षण के मुद्दे में जिस तरीके से एक आंदोलन हो रहे हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, तो इससे आपको साफ लगेगा कि नहीं, इसके पीछे राजनीतिक हित की भावनाएं जो राजनीतिक दलों की है वो ज्यादा है, सामाजिक हित की भावनाएं काफी कुछ दब गई हैं, ये साफ तौर पर देखने में आ रहा है। और मुझे लगता है फ्रेंड्स, शायद आपको भी लगता होगा कि फिर इसका हल क्या है। देखिए, इसका हल ज्यादातर जो हमारे जो मतदाता हैं या नागरिक कहना चाहिए यहां, अगर हमारे नागरिक बहुत अशिक्षित हो जाते हैं, बहुत ही प्रशिक्षित हो जाते हैं पॉलिटिकली भी मेंटली भी, तो डेफिनेटली फिर वो ऐसी चीजों को इग्नोर करने लगते हैं, और डेवलप्ड कंट्री में ज्यादातर ये हुआ भी है, क्योंकि उन्हें आप इस तरीके से छोटे छोटे रूपों में नहीं निभा सकते, वो छोटी छोटी चीजों के आश्वासन दे करके आप उनके मत को अपने पक्ष में नहीं ले जा सकते, वो ब्रॉडर इश्यूज पर काम करते हैं। तो हमें अपने नागरिकों के सोच को अभी ब्रॉडर बनाना होगा, व्यापक बनाना होगा, उदार बनाना होगा, यानी समूह के हित के ऊपर वो किस तरीके से राष्ट्रीय हितों को ले जा सकें, उसे महत्व दे सकें। जब तक उनके अंदर हम ये चेतना नहीं ला पाएंगे, तब तक जो राजनीतिक दल हैं वो मतदाताओं के मतों को इसी तरह से आकर्षित करने की कोशिश करते रहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से एक परिवर्तन आया है, जो हमें राज्य के चुनाव में भी और राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में भी दिखाई दे रहा है। अब मतदाता के दिमाग में जो बड़ी बात हो गई वो विकास की बात हो गई है, कि ऐसे राजनीतिक दलों के हाथ में सत्ता दी जाए जो विकास कर सके, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो कम से कम हम इस आजादी के बाद से अब तक जो जाति पर आधारित मतदान होते थे, जो धर्म क्षेत्र भाषा पर आधारित मतदान होते थे, अभी भी हो रहे, हम नहीं कह रहे कि वो बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन उसकी जगह पर कहीं न कहीं विकास धीरे धीरे हावी होता जा रहा है, तो एक बहुत अच्छी बात है। और ये क्रमशः विकास की ही प्रक्रिया होती है, तो इस पर मैंने थोड़ी सी बातें आपके सामने रखी हैं। आप सब इस इश्यू पर सोचें अपनी अपनी तरफ से, और बहुत अच्छा होगा कि सोचने के बाद आप अपने पॉइंट्स भी नोट करें, इससे आपके दिमाग को सोचने की आदत पड़ेगी। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में इतना ही, कुछ मैं आपको न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: अमित कुमार, विनय मौर्य, प्रियांक जैन, नीतीश तिवारी, निशांत गोयल, राहुल शर्मा लुधियाना पंजाब से, शुभम मिश्रा और नीलकांत भट्ट। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, दो छोटी छोटी सूचनाएं हैं। पहली बात तो यह है कि जो भी स्टूडेंट मेल लिखते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपना स्थान का भी नाम लिखें, कि वो कहां से लिख रहे हैं या मतलब कहां रह रहे हैं, तो उससे हम लोगों को थोड़ी सी सुविधा होती है। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि आप जानते हैं कि अब कल से लंबी छुट्टियां हैं, सैटरडे संडे के साथ ही साथ पहले गस्टेड हॉलीडे हैं, तो फ्रेंड्स अब आने वाले 4 दिनों तक डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आ पाएगा। आप सबसे 2 अप्रैल को फिर मुलाकात होगी। तो दोस्तों, अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा, आपके छुट्टी के ये दिन बहुत सुखद और आनंद पूर्वक व्यतीत हों, इन्हीं कामनाओं के साथ अब विदा लेता हूं। नमस्कार।